నమో బ్రహ్మాదిభ్యో బ్రహ్మ విద్యా సంప్రదాయ కర్తృభ్యో వంశర్షిభ్యో మహత్భ్యో నమో గురుభ్యః సర్వోపప్లవరహిత ప్రజ్ఞానగణ ప్రత్యగర్తో బ్రహ్మైవాహమస్మి బ్రహ్మైవాహమస్మి. సదాశివసమారంభాం శంకరాచార్యమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే కురు పరంపరా. శృతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాయన నమామి భగవత్పాదం శంకరం లోకశంకరం. శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం. సూత్రభాష్యకృతో వందే భగవంతో పునః పునః. ఈశ్వరో గురురాత్మేతి మూర్తిభేద విభాగినే వ్యోమవద్వ్యాప్తదేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః. ఓం అశుభాని నిరాచష్టే తనోతి శుభసంతతిం. స్తుతిమాత్రేణ యత్పుంస బ్రహ్మ తన్మంగళం పరం. అతికళ్యాణరూపత్వాత్ నిత్యకళ్యాణ సంశ్రయాత్ స్మతృణాం వరదత్వాచ బ్రహ్మ తన్మంగళం విదుః. ఓంకారతాశ్చ శబ్దశ్చ ద్వావేతో బ్రహ్మణపురా. కంఠం విద్వా వినిర్యాతో తస్మాత్ మాంగులికా భువో తస్మాత్ మాంగులికా భువో ఇతి. ఓం అథ ఓం అథ ఓం అథ. యైరిమే కురుపి పూర్వం పదవాక్య ప్రమాణత వ్యాఖ్యాత సర్వభేదాంత తాన్నిత్యం ప్రణతోస్మ్యహం. ఓం వాంగ్ మే మనసి ప్రతిష్ఠిత మనో మే వాచి ప్రతిష్ఠితం. ఆవిరాభిర్మ ఏది వేదస్య మాణీ స్తః శృతం మే మా ప్రహాసీ అనేనాదీతేన. అహోరాత్రాన్ సందధామి ఋతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి. తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు. అవతు మాం అవతు వక్తారమవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. మరి పిచ్చే బోల్నా. సరస్వతి నమస్తుభ్యం. వరదే కామరూపిణీ విద్యారంభం కరిష్యామి. సిద్ధేర్భవతు మే సదా. నితయే సర్వ విద్యానాం విషజే భవరోగిణాం. గురవే సర్వలోకానాం దక్షిణామూర్తయే నమః. అద్వైత్ వేదాంత్ కి కై విశేషతాయే హై జో और किसी दर्शन में और किसी संप्रदाय में प्राप्त नहीं है. नंबर वन पहली बात है, ब्रह्मात्मा को, आत्मा जो ब्रह्म है, उसको अद्वितीय बताया है. एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म. श्रुति के अनुसार यह आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है. दूसरी बात खास बताई अद्वैत वेदांत शास्त्र में, द्वैत सत्य नहीं है. द्वैतम इव भवति द्वैतम न भवति, मंत्र का है उपनिषद का। इतर इतरम पश्यति, इतरम इतरम जिघ्नाति, इतरम इतरम विजज्ञाति। वहां बताया इतर इतर जानाति, ये क्या है? द्वैत जो है द्वैत सा है, द्वैत नहीं है। आपकी आवाज और प्रतिध्वनि जिसको पड़गो गुजराती में कहते इको, ये दो नहीं है, प्रतिध्वनि भी आपकी ही ध्वनि है। छाया और प्रतिच्छाया, प्रतिच्छाया प्रतिच्छाया ही है। तो द्वैतम इव भवति द्वैतम न भवति। और निंदा रूप से बताया द्वितीयाद ही भयम भवति, द्वैत में भय है और भय ये संसार धर्म है। उदरम अंतरम कुरुते अत तस्य भयम भवति, जो अपने आपा और ईश्वर के बीच में थोड़ा भी भेद करता है कि मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं उसका विशेषण हूं, मैं तो अणु हूं, ये सब क्या है? भय का हेतु हो जाता है, ये भय है। जो भी थोड़ा भी अंतर करता है अद्वैत ब्रह्म से उसको भय की प्राप्ति होती है। और स्तुति रूप में कहा कि अद्वैत ब्रह्म के ज्ञान से द्वैत की निवृत्ति से अतगतो भयम् भवति, अतगतो भयम् भवति। पहले भय था, अभी क्या हो गया? गत, गॉन। तो जीव ब्रह्म की अद्वितीयता, द्वैत की मिथ्यात्वम। और तीसरी बात ये कहते हैं आत्मा का सर्वात्म भाव, ये कहीं भी नहीं है। जो सबका आत्मा है वही मैं आत्मा हूं, और ये स्वयं स्फुरित होने वाला अहम के रूप में जो आत्मा है वही सबका आत्मा है, सर्वात्म भाव। ये तीसरी बात अद्वैत वेदांत की विलक्षणता है, जहां सर्वात्म भाव की चर्चा है। तो आइए सर्वात्म भाव की चर्चा करने वाला ईशावास्य मंत्रोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का, इसकी चर्चा कर रहा है। कल तो आपने उसका एक श्लोक देख लिया, अभी दूसरा मंत्र देख रहे हैं, मेरे पीछे पाठ करना। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम् न ततोऽपि जुगुप्सते ततो न विजिगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम् ततो न विजिगुप्सते। कल हमने ये मंत्र अर्थ देख लिया है, अब आज का जो मंत्र है वो पढ़ेंगे। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत आत्मैव बुद्ध विजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वमनुपश्यतः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव बुद्ध विजानतः आत्मैव तत्र को मोहकः शोकः एकत्वमनुपश्यतः जिस सर्वात्म भाव की मैंने चर्चा की, दो मंत्र जिसका आपने पाठ किया, उपनिषद यह आत्मा सर्वांतरह कहती है। यह आत्मा सबका आत्मा है। ये मंत्र और उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त है। एक बात है, मंत्र में आलस्य नहीं है। एक ही बात दोबारा दोहरावनी करना, मंत्र को कोई शर्म नहीं है। क्यों? सूक्ष्मत्वात्, वस्तु इतनी सूक्ष्म है कि इसके साथ साथ इतना सूक्ष्म चित्त नहीं होगा तो ग्रहण नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्म कीटाणु को देखने के लिए खुर्दबीन यानी माइक्रोस्कोप को भी मदद लेके हमारी आंख भी इतनी सूक्ष्म होती है तब उसको देख पाते कीटाणु को। ऐसे ही आत्म सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इसलिए मन भी इतना सूक्ष्म शुद्ध एकाग्र समाहित होने की आवश्यकता है। ऐसे मन का निर्माण करना, कैसे ऐसे मन को प्रिपेयर करना, इसका निरूपण द्वितीय मंत्र में हो गया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि। जो भी कर्म करे वो चित्त को निर्मल करे, ऐसी सुंदर व्यवस्था मनुष्य के लिए है। चित्त का निर्मलीकरण कर्म से होता है, कर्म से वस्तु का बोध नहीं होता है। ज्ञान से ही वस्तु का बोध होता है, कर्म से तो जो कटता है वो भी उसी कोटि का होता है। अब फिर से मैं बात ये अभ्यास के लिए कहता हूं, कर्म योग मानी अनादि काल से चित्त में प्राप्त पूर्व जन्म के राग द्वेष, इस जन्म के प्राप्त राग द्वेष, अनंत जन्म के राग द्वेष। ने कई बच्चे को देखा, बचपन से अभी तक उन्होंने एक फल भी नहीं खाया, सीताफल हो या रामफल हो कि आम हो, वो मुंह मोड़ लेते, बच्चे कभी फल नहीं खाते। ये द्वेष कहां से आया? लेके आए। कई चीज बहुत पसंद होती है, बचपन से ही शराब पीना शुरू कर देते हैं। हम जो छात्रालय चला रहे बच्चों के लिए, 9 और 10 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, आदिवासी एरिया में आदिवासी बच्चे रखे हैं, बहुत अच्छे हैं, 45 बच्चे हैं मेरे पास। पर उस स्कूल में जहां पढ़ाई होती है वहां के बच्चे ने शाम को जाकर चुपचाप शराब पीना शुरू किया, स्कूल के बच्चे। ये संस्कार कहां से आए उन लोगों में? इतनी छोटी उम्र में शराब के लिए इतना तड़पना, ये तड़प लेके आए हैं, जैसे इट इज इन द ब्लड। तो संस्कार राग द्वेष पूर्व पूर्व जन्म से आते हैं और कई बार खतरनाक होते हैं। आप रावण को कितना भी उपदेश कराइए, महात्मा विभीषण कितना भी कहे, उसका मानने वाला क्यों? बहुत बुरे संस्कार कहीं से लेके आया है। पत्थर पर पानी, वेरी डिफिकल्ट। तो ये राग द्वेष के अनुकूल वर्तन करना, ये तो दुर्गति का हेतु है। हमें अच्छा लगे वही करेंगे, हमें बुरा लगे वो नहीं करेंगे। अरे भाई, ये तो तुमको कहां जाके इतने जन्म से पछाड़ रहा है। ये दो गुंडे हैं, माफिया डोंट्स। कृष्णा कहते हैं इनको, तयो हो नवसमागच्चे तौ ही अस्य परिपंथिनो। बड़े गुंडे हैं, क्या करें महाराज। मनुष्य को क्या धर्म है अधर्म है ये मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है। उस धर्म के अंतर्गत राग को लाइए, जो धर्म है वही मुझे पसंद है और जो अधर्म है उसके प्रति ही मन में द्वेष होना चाहिए। शास्त्र कहता है सुराम न पिबेत, तो सुरा के प्रति क्या होना चाहिए? द्वेष होना है। कलम जम न भक्षेत, मांसाहार मत करो, उससे क्या करना? द्वेष। मांसाहार अच्छा नहीं है। अहर हर संध्याम उपासित, रोज रोज संध्या वंदन करो, ब्राह्मण हो जनोई लिया है जल्दी उठो स्नान करो संध्या वंदन करो। ये क्या है? नहीं पसंद आता है फिर भी मन को राग के अनुसार न चलो, धर्म के अनुसार चलो। ये मत ढूंढो कि हमको जो अच्छा लगता है वो धर्म है तो अच्छा है, ये नहीं। जो धर्म है वही हमको अच्छा लगे, जो अधर्म है हमको बुरा लगे। झूठ बोलना अधर्म है। ऐसे कर्म योग ये राग द्वेष को नियंत्रण में, मैनेजमेंट ऑफ योर डिजायर, इस कर्म योग का। People don't talk like that, I know very well. They don't understand karma yoga. लोग ऐसे बात नहीं करते क्योंकि कर्मयोग की समझ नहीं है। इसको वश में लाना, इसी का नाम है चित्त शुद्धि। प्रसादे सर्प दुखा नाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पद्यवतिष्ठति। सब बात गीता प्रसन्ना, प्रसाद मानी निर्मलता, निर्मलता माने ये जो राग द्वेष अत्यंत उच्छृंखलते उसको आपने कर्मयोग के द्वारा वश में लाए, उसके परवश न रहे। परवशता से मुक्त होना ये चित्त शुद्धि का हेतु है। जब हमारा मन धर्माधर्म के अनुकूल प्रतिकूल हो, धर्म के अनुकूल हो, अधर्म से बिल्कुल बच के रहने वाला हो, ऐसा जो मन है उसके द्वारा ये सर्वात्म भाव जब उसके सामने रखा जाता है तो उसको बिल्कुल पकड़ में आ जाता है। अभी यहां फिर से चर्चा करते हैं सर्वात्म भाव। मैंने कहा ये सनातन धर्म में ये जो वेदांत, अद्वैत वेदांत को छोड़कर कहीं नहीं है, ये हमारी विलक्षणता है। और एक दूसरी बात आप लोग को मालूम होनी चाहिए कि पूरे संसार के जितने मजहब है, जितने संप्रदाय है, जितने फिरके हैं वो किसी में भी संन्यास का वर्णन नहीं है। ईश्वर कृपा से प्रेमपुरी महाराज संन्यासी थे, प्रातः स्मरणीय अखंडानंद जी महाराज संन्यासी थे। मुझे आज सुबह राज हरिभाई लाए थे वामदेव जी महाराज को, यहां थोड़े दिन के लिए ठहरे थे, आपके घर भी आए थे उस समय। विरक्त शिरोमणि, क्या दिव्य विभूति थी ये, सच्चे असली संन्यासी थे। याद रखना, रावण भी संन्यास का वेश धारण करके गया था। इसके पीछे रावण बहुत हैं और संन्यासी वेश के पीछे संन्यासी होना बहुत दुर्लभ है। ज्ञेयस्य तु नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो राग द्वेष के चक्र से मुक्त हुआ है वो ही है संन्यासी, उसके वश में नहीं है। और संन्यास माने यहां और ऊपर स्वर्ग और इहलोक के किसी की भोग की इच्छा जिसके हृदय में न हो, और उसकी प्राप्ति के जितने साधन है वो सबका त्याग, इस सबसे बड़ा काम संन्यास में है। आप देखेंगे एक क्रिश्चियन फादर है, वो हेवन जाने के लिए बैठा हुआ है, यहां सब छोड़ा किसके लिए? ये टूरिज्म है और क्या है, टूरिज्म है ये, प्रमुख टूरिज्म, हेवन में जाना है हेल से बचने के लिए। हमारा सन्यासी स्वर्ग में ब्रह्मलोक तक का त्याग किया है। एक देखो बात है, पैसे को छोड़ना हम रोज छोड़ते हैं थोड़ा थोड़ा पैसा, पर पैसे कमाने वाली आजीविका का भी त्याग करना ये कोई सामान्य नहीं है। पैसा भी छोड़ा, नौकरी भी छोड़ दी, ससाधन सर्व साधन साध्य परित्याग है, ये सन्यासी है। सन्यास की चर्चा उपनिषद और सनातन धर्म के सिवाय और कहीं नहीं है। सबका परित्याग करके आसमान के नीचे खड़े हैं, जो मिलेंगे सो खा लेंगे, नहीं मिलेंगे तो भूखे रह जाएंगे। प्रारब्धाय समर्पितम वपुः, ये जिस शरीर प्रारब्ध कर्म ने शरीर को लाया इस जगत में वही उसका परिपोषण करेगा, उसको कल की कोई चिंता नहीं है, उसको कहीं जाना नहीं, कुछ बनना नहीं है। हम लोग की दो बात होती है, कहीं जाना है और कुछ साफ बनना है, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, बन के दिखाना है। नो प्रेशर, ये सन्यासी। इसका वर्णन ये मंत्र में है, जो सर्वात्म भाव को जानता है वही सन्यासी है। और सन्यासी वह है जिसको सर्वात्म भाव की प्राप्ति हुई है। कैसे? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः। यस्मिन् काले, जिस समय, देखो दो समय हो ही जाता है, मानो कि ना मानो। आप लोग में से पता नहीं कितने लोग को तैरना आता है, तो मालूम नहीं है हमको, तो मालूम है हमारे कौन है बड़ी उम्र वाले हमको अगर मिले थे, वो इस उम्र तक मफतलाल में तैरने जाते हैं। चिमन भाई जाते नहीं, एक बड़े बूढ़े मिल गए, हर रोज एक घंटा तैरने जाते हैं। अच्छा है, अब तैरने के लिए जो जाते, एक बड़ी मुश्किल ये है कि तैरने के लिए कोई सिखाने वाला होता है कि नहीं? वो तो जमीन पे खड़ा रहता है और पानी में हमको उतरता है, जिसको तैरना नहीं आता है। और अगर आप सिखाओ और वो क्या कह जाए, तैरो,
मालूम है तैरना कैसे सीखेंगे, नहीं अब तैरो, तैरना सिखाने के लिए तू खड़ा है, नहीं नहीं ऐसे करो, हाथ मारो, ये मारो, वो कभी सिखा सकता है? आपको ही पानी के ऊपर कैसे रहना ये सीखना, और आप भी पांव हाथ मारते हैं, हाथ मारते सब लोग आगे ऐसे जाते हैं, आप कहां जाते हैं? और जीवन में जितना कभी पानी नहीं पिया है पूरा पेट भर के पानी पी लेते हैं, क्योंकि आता नहीं है। धीरे धीरे हाथ पांव पैर फिरते फिरते फ्री स्विमिंग आ जाता है, वो तो खड़ा ही रहा वहां। आप मुझे कह सकते कौन से समय आपको स्विमिंग सीखना आ गया? एक्सेप्ट समय के 9:06 को एक दूसरा है साइकिलिंग सीखना। साइकिलिंग ना आप लोग सबने बचपन में ट्राई किया होगा। साइकिलिंग सीखने वाला भी क्या करता है, आपको साइकिल में बिठा देता है, पैडल मारो, इसको ठीक पकड़ के रखना, बाएं दाएं देखना मत, ऐसे बैठो और मारते रहो। वो पीछे दौड़ता है थोड़ा पकड़ के, फिर क्या करता है, और आप भी ऐसे सीधे रहते हैं, और फिर क्या होता है, तो आपने मुझे छोड़ क्यों दिया? ऐसे सीखा जैसे बैलेंस करना। पूर्व मुझे डांटता है, तुमने सीधा पकड़ा, मैंने सीधा पकड़ा, पूरी पृथ्वी घूम गई, मैं ऐसे रहते रहा, ऐसे घूम गया। धीरे धीरे पैडलिंग करते हुए बैलेंस रखने का संतुलन सीखना, ये कब आ गया आपको मालूम है? एक्सेप्ट टाइम मालूम नहीं है। ऐसे ही प्रेमपुरी में नींद में से उठकर सीधे यहां आने और यहां बैठे बैठे कितने साल थे, बाबा जी को सुनते रहते हैं, और कब ज्ञान हो गया एक्सेप्ट समय बता सकते हैं? नहीं बात, पर होता है क्या समय में, पर कौन से समय हुआ ये नहीं सकते। आज का एक नया चला है कि बाबा जी लोग बहुत स्टंट करते हैं प्रोपेगेंडा। हमको 9:30 को रेलवे प्लेटफॉर्म पर ज्ञान हुआ, और उसको मनाते भी है, उसको क्या दिन कहते हैं, आत्म साक्षात्कार दिन, और बेवकूफ लोग मानते भी हैं पाते हैं। उसी हमको कोई बेवकूफ बना है, इसके अर्थ क्या है, हमारी योग्यता है वो पुरवार करता है ना। टेक समबडी कैन टेक यू फॉर राइट सो देट यू आर अवेलेबल फॉर राइट, बोलते हैं हमको आत्म साक्षात्कार दिन की हम उजवणी करेंगे, और सब लोग भाग रहे हैं। दूसरा भी चलता है, अमुक वृक्ष के नीचे बैठ जाओ आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। वृक्ष को और ज्ञान को क्या लेना देना है? बोधिसत्वा अज अ प्रॉब्लम। ज्ञान हुआ उस समय कोई वहां वृक्ष के नीचे बैठे थे वो ठीक है, पर ज्ञान के साथ वृक्ष का क्या संबंध है? ये सब है। आपको कहना पड़ेगा एक बड़ी मूर्खता के बाद, इसको कहते हैं अंध परंपरा। एक बुड्ढा ब्राह्मण था, हर रोज पूजा करवाता था, और एक बिल्ली वहां बैठी रहती थी। उसकी बिल्ली पर आ गई थी, वो ब्राह्मण बेचारा भला है, बैठी रहती थी, वो पूजा करता रहता, यज्ञ करता रहता था। वो जब मर गए तो उसने बेटे ने भी यज्ञ करना शुरू किया, तो बिल्ली खरीद के ले आया, क्योंकि हमारे बाप क्या करता था, बिल्ली बैठती थी तब यज्ञ करता है, अभी यज्ञ करने के लिए क्या करता है, इसको क्या कहते हैं, अंध परंपरा। आइए, यस्मिन का अर्थ है इन टाइम, क्लैरिटी कम्स इन टाइम, इट टेक्स टाइम। स्पष्टता है आत्म तत्व की, उसको समय लगता है, क्योंकि मन की शुद्धता का स्तर ऊपर नीचे होता रहता है। कभी मन इतना एकाग्र और शांत होता है, कभी कभी कवित्व स्फुरित होता है, यार पकड़ता है रेडियो स्टेशन,
कभी कभी कवित्व का स्फुरण होता है, ऐसी बढ़िया बढ़िया कविता है, ऐसे बढ़िया बढ़िया विचार आते हैं, उस समय सब होता है, बात कुछ नहीं। हर एक कवि, हर एक लेखक, हर एक वक्ता का एक समय होता है, उस समय सब स्फुरित होता है और थोड़ी क्षणों में इतना आता है कि वो कई कई महीने तक उसमें लिख सकता है। बाद में इसको कहते हैं फ्लैश कम्स, मन इतना, इसको मंत्र दृष्टा ही कहते एक प्रकार से। कभी मन इतना सूक्ष्म हो जाता है, उस समय आगे पीछे की सब बात स्पष्ट हो जाती है। हर एक कंपनी में एक मंत्र दृष्टा ही होता है, सीयर, वो कंपनी का आदि, कंपनी 100 साल के बाद क्या होगी, सबकी रूप देखा बुद्धि में देख के समझ करके कदम लेता है, उसको कहते हैं दृष्टा। वेरी फ्यू पीपल आर देयर। आज मोदी साहब को हम चाहेंगे पूरे देश का अभी 100 साल तक कैसे होना चाहिए, उसका पूरा विचार होना चाहिए। इको के दीर्घ दृष्टि, क्रांत दृष्टि कवि ही, यस्मिन काले क्या यथोक्त आत्मनि, जो आत्मा का वर्णन किया था, योमा पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति, तानि एव सर्वाणि भूतानि। एक बात है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतः यस्मात् कारणात्, पंचमी है अपादान पंचमी, जिस ब्रह्मात्मा से ये पूरा सृष्टि प्रकट हुआ, जगत प्रकट हुआ, सृष्टि प्रकट हुई। यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगाः, जैसे अच्छी तरह से प्रदीप्त जो आग है उससे कहीं विस्फुलिंग प्रकट होते हैं, इसी प्रकार उसी ब्रह्मात्म से पूरा जगत प्रकट हुआ। भूतानि भौतिकानि, पंच महाभूत, अपंचीकृत पंच महाभूत और उससे बने हुए सब स्थूल शरीर, लोक और लोकिन, ये सब भोग के लिए जो लोक है, भूहु भुवः सुवः मह जन तप सत्यम अतल वितल तलातल रसातल पाताल, नीचे सात, 7 अप 7 डाउन, ओके, ये 14 जो लोक है और उसमें रहने वाले सब जो जीव है, पेंट हाउस में ब्रह्मा जी है टॉप, पेंट हाउस वाला, और पाताल में शेष जी है, बीच में हम लोग है, पृथ्वी लोक है, भूलोक है, भूवा सुवा, और एक एक का वर्णन है, कैसे कैसे देवता है, कैसे कैसे नाग है, ये सब जीव वहां रहते, ये सब जिससे प्रकट हुआ। सर्वाणि भूतानि परमार्थ दर्शनात्, इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड, आखिर कार्य अपने कारण से कभी दूर नहीं जा सकता है। ये कपड़ा कितना भी करे, कितने धोबी घाट में, यहां एक धोबी घाट है ना, कहीं नहीं दे, धोबी घाट है, कितने भी धोबी घाट में जाके आए, कितनी पार्टियों में जाके आए, कितने लोगों के पास जाके आए, पर ये कपड़ा धागा से दूर जा सकता है, सूत से दूर जा सकता है, कभी नहीं जा सकता है। मटका भी कितना काम करता है, कहां कहां घूम के आता है, ये नवरात्रि का मटका है, कई स्त्रियों के सर पे घूमता है, गर्भो घूमे रे, लाते भी है लोग, एक एक क्या जाता है,
हमारे यहां सूरत में एक स्त्री थी, उनको जो विवाह के समय जो मटकी देते हैं ना, उन्होंने बचा के रखा था। अभी तक हमारे शादी का है विवाह, स्पेशल विवाह का यादगिरी के रूप में एक गड़ा है। गड़ा कई जगह जाता आता रहता है। पनियारी जो है पानी लेने जाती है और वहां जाके गॉसिप करके वापस आती है, ये ना गॉसिप सेंटर। सास सब गर्मी होती है, बहू कहां होती है पनगढ़ पे, तो सास सब इकट्ठी होकर बहू की चर्चा करती है। बहू किसकी चर्चा करती है? एक कॉल गॉसिप सेंटर। और उनको पानी भरने में बहुत टाइम लगता है, क्यों? बहुत कुछ कहना होता है, बहुत कुछ सुनना होता है। एक दूसरे को कहते तेरी सास तो मेरी सास से अच्छी है, कितनी जगह जाए आए गड़ा। गड़ा में जो मृत्तिका है, घट मृत्तिका से दूर नहीं जा सकता है। अब एक बात याद रखने का है, घट मृत्तिका है, माला सुवर्ण है। तुम्हारा दो हो गया ना, एक तो है माला और दूसरा क्या है सुवर्ण है। ये दो को एक किया आपने, दो पक्षों को एक में मिलाया, नीतीश और लालू एक हो गए, दोनों बदमाश एक हो गए, ऐसे है क्या? दो एक हो गए क्या? हम भी विवाह के पहले अलग अलग थे, विवाह के बाद क्या क्या हो गए? एक हो गए, हम दो एक है, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ लड़ते हैं, ये सब सब एक हो गए, ऐसे है क्या? घड़ा मृत्तिका है, इसमें यह है कि घड़ा माटी मात्र है, मृत्तिका मात्र है। घड़ा नाम का जो पद है, घट पद, उसका जो अर्थ है वो मेरी बुद्धि में पट घट शब्द जिह्वा में है। पदम तस्य अर्थ मन में स्फुरित होता है, जिसका पेट बड़ा गला छोटा, इसको कहते हैं क्या? और एक और खुला ये भी होना चाहिए, इसका नाम है घट। कम्बूय ग्रीवमान घट नैया युग का लक्षण है। आपको छोड़ते हैं तो गड़बड़ से हैं। ये जो गड़ा है वो पद है, शब्द है, और उसका उच्चारण होते ही मन में स्फुरण होता है। बहुत बढ़िया बात है। देखो आप, देखो आपको ज्ञान कैसा है। मैं कहूं माला, घर में माला दिखती है, गैया मैया, मन में गैया दिखती है। कितने विद्वान हैं आप। पट कपड़ा, कपड़ा दिखता है, चूहा, चूहा दिखता है, मंदिर, मंदिर दिखता है, अपना घर, अपना घर दिखता है, कौवा, कौवा दिखता है, कौवा आपको मालूम है। ऐसे मैं कहूं ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, क्या हुआ? वो भी पद है, उसका अर्थ बुद्धि में स्फुरित नहीं होता है। इसका मतलब है हमको फिर से उसको सुनना चाहिए। जब मैं कहूं ब्रह्म तब मैं होना चाहिए, उसका अर्थ ये स्फुरित होना चाहिए। पर एक आप देखिए कि जो शब्द है उसका अर्थ स्फुरित होता है, और जैसे शब्द बदलते जाते हैं उस अर्थ भी बदलता जाता है और उसका काम भी बदलता जाता है। मिट्टी का एक काम है, घड़े का दूसरा काम है, घड़े के ठीकरे जो है उसका तीसरा काम है। काम बदल दिए जाते हैं, सूत एक है, कपड़ा दूसरा है, और उसमें से बना हुआ शर्ट तीसरी चीज है। तो नाम शब्द अर्थ
और उसका उपयोग तीनों बदलते जाते हैं। ये सृष्टि इससे पृथक कुछ है? पद, अर्थ और क्रिया तीन ही है। ये तीनों सचमुच में उस जिससे प्रकट हुए हैं उससे कभी भिन्न नहीं हो सकते हैं। पर एक बात लगता है, हम सोचते हैं मिट्टी पीछे रह गई, घड़ा बाहर आ गया, सूत पीछे रह गया, कपड़ा बाहर आ गया, सुवर्ण पीछे छूट गया, माला बाहर आ गई, ब्रह्म पीछे छूट गया, सृष्टि बन गई। एक जन सोचता है, ईसाई लोग जो घूमते ना आस पास आपको कन्वर्ट करने के लिए, वो कहते हैं देखो आप लोग कहते, हिंदू लोग कहते हैं ईश्वर से जगत बना, तो ईश्वर ने ईश्वर जगत बन गया तो अभी क्या हो गया? जगत बन गया, ईश्वर रहा जीरो, ईश्वर अभी है नहीं। पहला लू आता कण की थी, उससे रोटी बनाई, अभी कण की रही नहीं रही, पहले ईश्वर था, फिर क्या हो गया? जगत हो गया, ईश्वर। आप भी कहे हाँ बात तो ठीक है, मैंने आपने भी नहीं समझा उसको। कई लोग के उत्तर बड़े आश्चर्यकारक होता है। दो जने लड़ रहे थे कि सूर्य है कि चंद्रमा है, वो तीसरा बाहर से आया, बाहर गांव से आया, उसको पूछा भैया बताओ हमारी लड़ाई हो रही है ये सूर्य है कि चंद्रमा है? वो कहते मैं कैसे बताऊं, मैं तो बाहर गांव से आया हूं, ये गांव की विशेषता मुझे क्या मालूम। है ना, मैं तो बहुत यानी नवाजो नहीं मने सो खबर तुम्हारे गांव में शू हो। फिर पूछा सूर्य उपयोगी है कि चंद्रमा उपयोगी है? तो नए आदमी ने कहा कि सीधी बात है, चंद्रमा उपयोगी है, क्योंकि दिन में इतना प्रकाश होता है, सूर्य का क्या काम है? रात को जब अंधेरा होता है तो काम में आता है कौन? चंद्रमा। कौन उपयोगी है? वाह वाह कितना ज्ञान देखो। हमको सूरत में माता जी आके एकांत में बोलती है, स्वामी जी एक बात आपको मालूम नहीं होगी, बड़ा रहस्य बता दे। वो क्यों? कि तापी की नदी में शक्ति नहीं रही है। मैंने मां शक्ति कैसे चली गई? पहले बहुत शक्ति वाला पानी था। अच्छा माता जी, क्या हुआ कि जो डैम में से बिजली बना बना के शक्ति सब निकाल लेते पानी से, अब पानी में शक्ति कहां है? वो बात बिल्कुल आपकी सत्य है। अब कहीं भी जाएंगे ये लोगों की कमी नहीं है। मुझे बंबई में एक आदमी पूछ रहा था, यहां बंबई में आपको मालूम बर्फ के बड़े बड़े वो क्या बोलते हैं उसको, लादी, हम लोग गुजरात लादी कहते हैं, वो देखा ट्रक में जा रही थी। वो बोलता है साइंस कितना आगे बढ़ गया, ये लोग हिमालय से बर्फ यहां तक ले आते हैं, देखो अभी क्या बोलने का। देखिए इतना जल्दी कैसे लाते हैं? तब मैंने कहा कि नहीं वो तो गंगा में डाल देते हैं तो नीचे तक आ जाता है ऋषि के, फिर उठा के लाते। हाँ आप तो बहुत ऊंचे आ रहे स्वामी जी। बेवकूफ हुई कमी नहीं होती है। नाम रूप क्रियात्मक प्रपंच अपने विवर्त अभिन्न निमित्त उपादान कारण से कभी पृथक नहीं हो सकते, उससे अनन्य है। मंत्र कहता है यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मै एव अभूत आत्मन एव संवृत परमार्थ वस्तु विजानत विवेक करके जो जानता है और जो विशेष रूप से जानता है कि समग्र जगत प्रपंच जो है जैसे स्वप्न जगत स्वप्न दृष्टा से अपृथक है, ऐसे ही जागृत सृष्टि भी इस आत्मा जो व्यापक है उससे अभिन्न है। पूरा विश्व ब्रह्मांड इस छोटी आत्मा से अभिन्न नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मा जो ब्रह्म है, व्यापक है, उस मुझ आत्मा से अभिन्न है। जगत कारणम ब्रह्म, ये बात सिर्फ वेद के मंत्र से सिद्ध किया जाता है। जन्माद्यस्य यतः यस्मात् कारणात् अस्य जगतः जन्म आदि विकारः स्थिति भंगः। जिस मिट्टी से घड़ा पैदा होता है, उस मिट्टी की स्थिति घड़े के कारण, मिट्टी के कारण ही है। घड़ा की उत्पत्ति मिट्टी से, घट की स्थिति भी किसके कारण है? जब तक मिट्टी है तब तक घट है, और दंड के द्वारा टूटने पे वो घड़ा फिर से किसमें मिल जाता है? मिट्टी में। उसको के कहते हैं मसाला उपादान कारण। ये सृष्टि जिससे उत्पन्न हुई, जिसमें रही, जिसमें लीन हुई, जो ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता है, लीन नहीं होता, स्थित नहीं होता है, वो ब्रह्म आत्मा है। ये बात श्रुति की अपूर्वता है। जगत कारणम ब्रह्म एव प्रत्यगात्मा प्रत्यक्ष असो आत्मा। मेरा नाम हमारे गुरु जी ने स्वामी प्रत्यग बोधानंद दिया है। लोग प्रत्याग बोधानंद लिखते हैं, पूरा ग लिखते हैं, उसमें तो उसको होना चाहिए। और दूसरी बात, मैं जहां भी जाता हूं, मजा इंट्रोडक्शन करते हैं, स्वामी जी बड़े दूर से आए, यह वो चलता है, बाद में कहते हैं स्वामी प्रत्यक्षा बोधानंदा, फिर पूरा प्रवचन प्रत्यक्ष क्या उस पर चलाते हैं। मैं क्या करूं, उठ के भाग नहीं सकता हूं कि मेरा प्रवचन है, सुन नहीं सकता हूं कैसे लोग बोल रहे हैं। प्रत्यक्षा बोधानंदा जो है, ये जो प्रत्यक्ष सो आत्मा है, इनर मोस्ट सेल्फ, ये जो दृष्टा स्वरूप जो आत्मा है, जिसके सामने सब दृश्य है। और एक बात खास समझना वेदांत में, दृश्य दृष्टा से अभिन्न ही होता है। प्रातस्मरणीय अखंडानंद जी महाराज एक दिन बोल रहे थे, बड़े मस्ती से बोल रहे थे, बाबा जो चीज जहां दिखती है वही होती है। मेरे सामने एप्पल है, सेब है, ये आपको कहां दिखता है? आंख ही होती नहीं दिखता, आंख में दिखता है। आंख में दिखता ऐसा किसको दिखता है? मन को दिखता है। मन में एप्पल है, ये किसको मालूम पड़ता है? प्रत्येक आत्मा को। प्रत्येक आत्मा को दिखता है किसको मालूम पड़ता है? पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा साबर, उससे पर कोई नहीं है। इसका मतलब है ये फल जो है मेरे सामने, उसका स्फुरण सिर्फ आत्मा में ही होता है। इसी प्रकार से विश्वम, ये जो विविध प्रत्यय गोचरम, अलग अलग वृत्ति के रूप में दिखने वाला ये जगत है, वो मुझ ब्रह्मात्मा में ही स्फुरित होता है और उससे अभिन्न है। अब एक याद रखना, अभिन्न होना माने मिथ्या है। मिथ्या और सत्य बनके दो नहीं होते हैं। मिथ्या सत्य है, सत्य पूरा होना, तापसी पूरा होना, अरे मिथ्या सत्य है, सत्य अब्बा, नहीं तो फिर से हिसाब से शुरू करना पड़ेगा यहां से। मिथ्या सत्य के बिना नहीं हो सकता है। मिथ्या वो है जिसकी स्वतंत्रता सत्ता नहीं है। मिथ्या वो है जो उपयोगी होता है, घड़ा उपयोगी था, मिट्टी नहीं। मिथ्या वो है जो दिखने पर भी होता नहीं है। यह है सबसे बड़ी माया, पश्चिमे योगमेश्वरम। ऐसे जो जानता है, अब उसका फल क्या, उसका आत्मस्वरूप का मूला विद्या अज्ञान दूर हो गया, पूर्ण ब्रह्म अहमस्मि जान गया। अब जहां अज्ञान होता है वहां उसके दो प्रोडक्ट अवश्य होते हैं। जहां मलेरिया के जम शरीर में होते हैं वहां दो चीज क्या होती है, ऐसी ठंडी लगती है, गर्मियों में वो कांपता है, और ऐसा बुखार चढ़ता है कि पूछो मत। ये कहां होता है, जब तक मलेरिया के कीटाणु आपके शरीर में है। इसी प्रकार से जब तक अज्ञान है, बेवकूफी है, तब तक दो चीज हमेशा बनी रहती है, क्या, शोक और मोह। शंकराचार्य महाराज के भाष्य पे आनंदगिरि जी लगते हैं, शोको भवती हा हतो अहम, न मे पुत्र अस्ति, मैं तो मर गया, अरे मेरा बेटा नहीं है, बेटा वह हाथ में नहीं है, न तो मैं क्षेत्र अस्ति, मेरे पास जगह नहीं है, बम्बई में फ्लैट नहीं है। ततः पुत्रादिन कामयते, और पुत्र की इच्छा के लिए बड़ी देवता की आराधना करता है, और क्या करता है, देवता आराधनादि चिकर्षति, न स्वात्म न तू आत्मिकत्वम पश्य, और क्या करता है, अपने आत्मा को देखता नहीं है, और देवता से चाहता है कि मुझे पुत्र मिले। मोह भी है और शोक भी है। मोह क्या है, अपने को ठीक समझता नहीं है, ठीक ठीक विवेक बुद्धि नहीं है, इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, ये तो चाहिए और चाहिए। और उसका शोक क्या है, नष्टा में भारिया, मेरी पत्नी मर गई। कई लोग को दूसरा दुख होता है, न नष्टा में भारिया, ये दूसरा दुख होता है। पति पत्नी ताजमहल में गए, पत्नी ने ताना मारा, देखो अपनी पत्नी के लिए शाहजहां ने महल बनवाया, ताजमहल, तुमने मेरे लिए क्या किया। वो कहता मैं भी करना चाहता हूं, पर तेरा कुछ हो तब करूं ना। इसको ये दुख है, वो नहीं गई अभी तक, ये दुख है। और दूसरे को क्या दुख है, एक को ये दुख है कि मुझे पुत्र नहीं है, दूसरे को दुख क्या है, हाय राम ये बेटा कहां से आ गया, आत्मदेव को दुख था, ये धुंधुकारी कहां से आ गया, है कि नहीं, उसको पुत्र होने का दुख था। ऐसे है, और लाह लिखा है भागवत ने, कुपुत्र अच्छा है, क्यों, वो वैराग्य देता है। ये सब है मोह, ये सब मोह अवश्य है। दशरथ राजा कितने बड़े राजा थे, पर कैकेयी का मोह, पुत्र का मोह कितना था। कौशल्या में यह बस अब बात नहीं, बड़ी विवेकी है, मोह था, पर आखिर ईश्वर से था तो कल्याण हो गया। एक बात महाराज जी रामायण की बहुत बढ़िया सुनाते थे, कि जब ओ क्या पक्षी जटायु, भगवान ने कहा मैं तुमको पुनर्जीवित कर देता हूं और तुमको ठीक ठाक कर देता हूं, तुम जिंदा हो जाओ। तो महाराज मरने के समय आपका नाम लेने से कल्याण हो जाता है, तो मेरे तो आप आ गए, अब मेरा कल्याण में क्या बात है, अभी क्या जीके क्या करूंगा। तो भगवान ने कहा कि जटायु जी एक काम करना, कि क्या, कि सीता जी का हरण हो गया है, ये बात मेरे लोक में जाके मेरे पिता दशरथ जी को मत कहना। कि मैं छुपाऊं क्यों, वो बात रावण आके स्वयं कहेगा थोड़े दिनों में बात। इसी बढ़िया बात है, ये मोह, मेरा बच्चा मेरा धन, और उसके कारण क्या होता है, सो अर्जुन का पूरा विषाद योग। आखिर अर्जुन ने गीता सुनने के बाद यही कहा, नष्टो अब्बा, गुरुजी ये बात सुनने के लिए इतने आतुर होते, क्या मेरा चेला कहे, नष्टो मोह, स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाचित सितोसी कत संदेह, अभी मेरे कोई संशय नहीं रहा, संशयात्म नहीं रहा। विद्यते हृदय ग्रंथि चित्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। संसारस्य अत्यन्तमेव उच्छेद प्रदर्शितः। अविद्या काम कर्म दूर हो गया ये सर्वात्म का दर्शन से। मैं सोचा था और तीन मंत्र करूंगा पर समय अभाव है, और बड़े प्रेम से आप लोगों ने ईशावास्य का श्रवण किया, मैं हमेशा उत्सुक रहता हूं। और गिरीश भाई तो मुझे पहले से पकड़ लेते, गिरीश भाई चिमन भाई आ गए, एक दिन आके बैठ गए, अगली डेट क्या है, अभी ये तो डेट पूरी नहीं हुई है, अगली डेट क्या है, मैं इनके साथ डेटिंग करता हूं है ये लोग डेटिंग कर रहे, अगले साल होगा 1 से 10 जुलाई, भी से बोल देता हूं। ओके ठीक है, बढ़ाएंगे जरूर बढ़ाएंगे, तथास्तु। हमको तो ये आनंद रहता है रहने का।
नारायण नारायण नारायण। स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम। वेदांत सुनने का कितना आनंद आता है स्वामी जी के श्रीमुख से। लोग कहते हैं कि वेदांत बहुत रूखा है, सूखा है, नीरस है, सुनने में आनंद नहीं आता। उनको कहना चाहिए कि वेदांत सुनना हो तो स्वामी जी के श्रीमुख से वेदांत सुनिए। उपनिषद के गूढ़ सिद्धांतों को कितनी सरलता से और कितनी सरसता से और उस पर पूरा रस भरकर हमको हंसते हंसाते हुए स्वामी जी ने हमें इस आवासीय उपनिषद सुनाया। हम वाकई बहुत ही भाग्यशाली हैं, इतने गूढ़ रहस्यों को स्वामी जी ने हमें बहुत थोड़े दिनों में, जैसे कहते ना गागर में सागर, सुना दिया। स्वामी जी ने जो बातें कही उसका हमें मनन करना चाहिए, वो हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। इस आवासीय उपनिषद का सार यही है कि सारा विश्व, सारा जगत ईश्वर से, उस परमात्मा से ओतप्रोत है। उस ईश्वर के अलावा इस जगत में कुछ भी नहीं है। यदि भगवत भाव हम सब में हो जाए, सब प्राणियों के प्रति भगवत भाव हो जाए, तो हम किससे ईर्ष्या करेंगे, किससे द्वेष करेंगे? जब सब हम अमी हैं तो द्वेष हम किससे करेंगे? स्वामी जी ने कहा कि हमें भगवत दृष्टि रखनी चाहिए, सब अपने हैं, हमसे पराया कोई भी नहीं है। स्वामी जी ने बताया कि जो कुछ भी हमें प्राप्त है, जो कुछ भी संपत्ति, जो कुछ भी भोग हमें प्राप्त है, उसे भगवत दृष्टि रखकर अनासक्त भाव से हमें उसका उपभोग करना चाहिए, और हमारी बुद्धि पर जो आवरण है, जो प्रतिबंध है, उसको हटाने के लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अंत समय में हम उनका नाम कभी न भूलें। भगवान ने गीता में कहा है अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलयुग। यह प्रवासी याद हो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वामी जी के शरण चरणों में प्रणाम करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यवत्। जय श्री कृष्ण।